हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांतिर अनंतरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते अर्थात भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में कहते हैं कि मन की शांति का अर्थ क्या है। मन की अशांति का अर्थ पर समझ लेना चाहिए। मन की अशांति का अर्थ है विषय भोगों को लगातार मन ढूंढता रहे। इसका अनुभव आप लोगों को है या मैं खाली थ्योरी बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यस, ये सहज रूप से जो हमारा राग है भौतिक विषयों के प्रति, ये मन की अशांति है। मन को इधर से उधर जो कामनाएं हृदय में हैं वो लेके जाती हैं। तो मन की अशांति का अर्थ है मन का इधर उधर भटकना भौतिक इच्छाओं के कारण। तो कर्म फल के त्याग से मन की शांति प्राप्त हो जाती है, अर्थात मन शांत होकर के भगवान के रूप का चिंतन कर पाता है। अन्यथा अशांत मन से व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो एक जगह स्थिर होकर के भगवान का भजन नहीं कर पाता है। दान देना की बात आ रही थी। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। जिस श्लोक में बताया गया था मय एव मन आधस्व मय बुद्धिम निवेशय, ये श्लोक भगवत प्रेम की स्थिति को समझाता है। और अभ्यास योग क्या लिखा था श्लोक, अभ्यास योगे न ततो मामेक्षतम धनंजय, वो श्लोक था विधि विधानों से पूर्ण। जिसका हृदय में प्रेम नहीं है वो विधि विधानों से प्रेम का विकास कर सकता है। हम लोग विधि विधान में लगे हुए हैं। हाँ, जो लोग ध्यान करते हैं वो अपने कर्म फल का त्याग करते हैं, वो ज्ञान और ध्यान से श्रेष्ठ है, यही भगवान गीता में बता रहे हैं। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है, यानी कि शरीर से पृथक रूप में। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुँचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियाँ हैं जिनमें मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों विषयों नहीं होना चाहिए तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद्गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म पजल लिखा हुआ है, कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। पता नहीं इस प्रकार के ध्यान का हमें तो कोई अनुभव है नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि अपने को परब्रह्म मान लेना उस पर ध्यान करना, मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है कि प्रभुपाद जी किस बारे में बात कर रहे हैं। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुँचने की दो विधियाँ हैं, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। ये बात समझ में आ रही है कि व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता है तो क्रमशः ज्ञान का अनुशीलन करे कैसे वो शरीर से भिन्न है, और उसके बाद वो ध्यान का अभ्यास करेगा। लेकिन ये ज्ञान ध्यान में कैसे परिवर्तित होता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के बारे में हम नहीं समझते। और उसके बाद कर्म फल का त्याग करता है, फिर धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। लेकिन दूसरा जो नहीं 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 वो नहीं, देखिए चक्कर क्या है कि जब तक हम किसी प्रक्रिया के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं, कोई भी टीका करना वो ठीक नहीं रहेगा। अजामिल वो अलग कथा है। जो हमने चर्चा किया था कि जिज्ञासा से ध्यान होता है, वो भगवत जिज्ञासा है। भागवत को सुनना, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, उससे भगवान का ध्यान लगता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपने को ही परब्रह्म मानता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कुछ क्रमिक विकास होता है इससे। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति भक्ति प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फलों का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। ये भी हमने कल चर्चा कर लिया था कि अगर व्यक्ति दान नहीं करता है, अपने कर्म फलों को त्याग नहीं करता है, तो कितना भी ज्ञान दीजिए उसके ज्ञान हृदय में ठहरता नहीं है। तो आवश्यक है जो लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं उस प्रकार का त्याग करें ताकि उनका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। ये क्रम विकास है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर क्या हुआ हरेक के लिए संभव नहीं है। क्या लिखा है? लेकिन प्रत्यक्ष विधि हरेक के लिए संभव नहीं है। उसका कारण हमने बताया था, क्योंकि लोगों की भक्ति में श्रद्धा नहीं होती इस कारण से। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। ये आप लोग समझ गए थे, पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि जिन लोगों का भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो लोग कर्मफल का त्याग कर सकते हैं। अपने जो भी उनके पास धन इत्यादि है उसका उपयोग सामाजिक सेवा के लिए कर सकते हैं। मिक्सर तो फ्लिप हो गया, क्या करें? हरे कृष्णा। वो स्पीकर को उस पर लगाइए, उस वाले पे लगाइए। स्पीकर ऑफ हो गया शायद। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रहा है, ठीक है, इसमें आवाज आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उन लोगों की भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन अगर वो ना भी हो तो भी कर्म फल का त्याग करने से उनका क्रमिक शुद्धि होती है। ओके, उन तो स्पष्ट है, इसमें समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। उन हाँ, माइक पे पूछिएगा, माइक दीजिए उनको।
कल ही आपने बताया था कि
संभाल के थोड़ा ठीक कीजिए उसको।
जैसे कल की क्लास में आपने बताया था कि गृहस्थों को कम से कम 10% जो है अपने दान देना चाहिए।
एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 50%, हाँ, लेकिन 10% से शुरू करना चाहिए।
लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं बैठता हूं, तो लोग अपनी संपत्ति का 1-2% भी हार्डली देते हैं।
0.1% भी देते होंगे तो बहुत बड़ी बात।
तो फिर क्या इस अवस्था में कैसे होगा फिर उनका?
तो शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या कह सकते हैं। देखिए, लोग आध्यात्मिक प्रगति चाहते ही नहीं है। जो व्यक्ति कहीं भी कुछ प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए वो फिर कोई भी तपस्या करने के तैयार है। तो कलयुग की स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं करना चाहता, लेकिन स्टैम्प जरूर लगवाना चाहते हैं कि हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं लिप सर्विस। ठीक है, क्या कर सकते हैं। उनको बोलिए हरे कृष्ण जपें तो धीरे धीरे, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, और इसके द्वारा धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। माइक पे पूछिएगा।
पहले जो पैराग्राफ में ऐसी भी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है।
हाँ, वही अजीब सी स्थिति, इसके बारे में मैं कोई जानता नहीं, बस इसको आंग्रह उपासना कहते हैं। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में ऐसा बोलते हैं, व्यक्ति अपने आप को ही परब्रह्म या भगवान मान लेता है। लेकिन इससे क्या फायदा होता है इसको तो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी हम लोग कोई साधना करते नहीं।
तो वो स्थिति भी अच्छी है ऐसा,
जो भी है कहा जाए क्या बोला जाए। हम तो देखिए, भक्ति की प्रत्यक्ष विधि को पालन करके ही प्रगति होती है, और बाकी समय जब बोला जा रहा है क्रमिक, तो क्रमिक का मतलब कितना क्रम लगेगा और कितने जन्म लगेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है,
कलयुग में तो ध्यान की स्तुति की ही नहीं गई है, तो ध्यान का यहाँ पे क्या अर्थ निकाले? क्योंकि कलयुग में
देखिए एक अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ले रहे हैं ध्यान का, वो थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में ले रहे थे कि वो जब ध्यान जो है और ये जो कर्म फल त्याग है, शांति है, सब वो भगवत प्रेम के संबंध में दे रहे हैं, उसका अर्थ उधर ले जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद इस प्रकार की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उस व्याख्या को टच नहीं कर रहा। भगवान के रूप पे ध्यान करना ये प्रामाणिक विधि है, ये तो भक्ति की प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन केवल ध्यान करना ये कलयुग में संशोधित नहीं है। ओपन आय समाधि की बात सर्वम प्रभु कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान ध्यान नहीं कहलाता है, वो अर्चन है, वो भगवान का अर्चन है, उसमें भगवान का स्मरण प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन ध्यान की जो विधि जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने ध्यान किया था वो अलग विधि है। लेकिन भगवान के विग्रह की डायरेक्ट सेवा करना वो नवधा भक्ति में आता है। इसलिए मुख्य रूप से ध्यान विधि नहीं है, मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन विधि है, और उसके द्वारा अपने आप भगवान का में भक्त का मन लगने लगता है, स्मरण दिशा से कहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। अर्थात बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हैं लेकिन वो सारे प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं करने वाले, व्यक्ति को सीधे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यह प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। क्यों हो रहा है ऐसे बार बार? ओके, अब भगवान जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उन भक्तों के गुणों की चर्चा करेंगे और बताएंगे किस प्रकार का भक्त भगवान को प्रिय होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भगवद गीता के बारे में अध्याय के 13-14 श्लोक को देखेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यार्पिता मनो बुद्धिर्। कृष्णा, व्हाई इज दिस हैपनिंग अगेन? यो मद भक्त समे प्रियः। अनुवाद पढ़िए दशरथी प्रभु।
जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मित अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
आप देख सकते हैं कि एक बार चर्चा हुई थी कि कुछ लोग भक्ति में हमें दिखते हैं भक्ति में लगे हुए लेकिन उनका आचरण ठीक से नहीं होता है। तो ऐसे भक्त भी भक्त तो हैं लेकिन भगवान को प्रिय भक्त नहीं कहा जा सकता उनको। तो भगवान को वो भक्त तब प्रिय होते हैं वास्तविक रूप से जब इस प्रकार के दिव्य गुणों से वो आभूषित हो जाते हैं। वैसे तो कोई भी भक्ति करता है तो भगवान का अनुग्रह उस पर होता है, लेकिन वाकई जो भगवान को प्रिय भक्त हैं वो इन सारे गुणों से युक्त होने चाहिए। तो भक्ति के जो अभिधेय है वो भक्ति ही है। भक्ति करने से सारे गुण अपने आप प्रकाशित होते हैं, लेकिन अगर हम ये गुण किसी वैष्णव में देखते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल गुण हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मतलब क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे।
तात्पर्य, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं।
अर्थात इससे पहले तक पिछले श्लोक तक भगवान क्रमिक विकास के बारे में बात कर रहे थे कि आप और भी कर सकते हो, अन्य क्रियाएं कर सकते हो भक्ति को छोड़ के, लेकिन अब फिर वो भक्ति के वर्णन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उन भक्तों का क्या गुण हो जाता है। इस फैन को ऑन कर सकता है? यस।
शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है।
क्या ऐसा हम लोग सोच पाते हैं?
नहीं।
देखिए कि शत्रु को शत्रु ना माना छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर थोड़ा सा कोई आपको सब्जी कम दे दे, भूल जाए राइस देना, पनीर सब्जी नहीं दी, तो आदमी कहेगा ये तो मुझे ये तो मेरी महानता समझा ही नहीं, कैसा वैष्णव है कि इसकी लगे ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है इसको। इस प्रकार से व्यक्ति अहंकार से विभूषित हो जाता है। हम सभी लोग इस प्रकार से हैं, इसीलिए हम ये श्लोक को देख करके व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अभी हमको भक्त बनने में और भक्त सच्चा भक्त बनने में बहुत समय लगेगा। सहिष्णुता ये बहुत मुश्किल गुण है, टॉलरेंस बहुत मुश्किल गुण है। और फिर शत्रुओं को ये सोचना कि ये तो व्यक्ति मेरे ही कर्मों का पार्सल मेरे को दे रहा है, कहाँ कोई समझ पाता है इतनी आसानी से। तुरंत हमारे मन में शत्रुता का भाव आ जाता है, छोड़ूंगा नहीं उसको, निकाल के मारूंगा, मारूंगा उसको, ऐसे करके भावना आ जाती। तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सबका एक मुख्य कारण ये है, आधारभूत कारण ये है कि भक्त का हृदय भगवान की भक्ति से आपूरित रहता है, इसलिए इन भावनाओं का कोई स्थान उसके हृदय में नहीं होता। आप इंटेलेक्चुअली ऐसे करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ हद तक ही ये संभव हो सकता है, लेकिन भक्ति के द्वारा ही जब हृदय में भगवान की भक्ति से आनंद होता है तब व्यक्ति इन सारी चीज़ों को सहन कर सकता है। ये मुख्य बात, ये चीज़ तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान से बताते हैं, क्योंकि मेरे भक्त भगवान के मतलब उनके भगवान के गुण कीर्तन में, नाम कीर्तन में, एसेंशियली भगवान के श्रवण कीर्तन में, भक्ति में इतने कह सकते हैं आनंद में रहते हैं कि उस जगत के दुख का वो, या इस प्रकार के कोई व्यक्ति अगर उनका शत्रु बनता है तो उसका वो प्रतिकार नहीं करते। आगे पढ़िए,
श्रीमद् भागवतम में 10-14-8 में कहा गया है,
तेनुकंपां सुसमेक्षमाणो भुंजानैवात्मकृतं विपाकम्।
जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, यह तो भागवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा, भागवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है।
शांत और धीर का अर्थ समझ लेना चाहिए, अर्थात हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करते रहना। दुख का अर्थ हम लोग सोचते हैं शारीरिक दुख, लेकिन दुख का अर्थ मानसिक दुख भी हो सकता है। यह हृदय में भौतिक वासनाओं का आवागमन, ये सब भी दुख है, और ये सब हमारे किए गए विगत कर्मों का ही परिणाम है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो अगर भोग की वासना आती है तो वो भी बहुत कष्ट देती कि ये क्यों आ रहा है, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ लेकिन ये क्यों आ रहा है। और इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार की बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सारी कठिनाइयाँ सब समाप्त हो जाती हैं, भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो ये तो सत्य बात है कि जितना भी भक्त के जीवन में कष्ट आ रहा है वो उसके कर्मों के अनुसार बिल्कुल नहीं आता है, बहुत कम आता है, भगवान कृपा करते हैं। हमें केवल अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त दवा नहीं खाएगा अगर बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण कंप्लेन का नहीं होता, वो जो भी आवश्यक है अपने शरीर के निर्वाह के लिए वो करना चाहिए। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि जितना मुझे अपने कर्मों की वजह से भोगना पड़ता उससे बहुत कम मेरे को भोगना पड़ा है। और धीरे धीरे भक्ति के अनुभव से आप समझ भी जाओगे कि इतना महत्व नहीं होता है। आप देखेंगे कि हमारा मन जो होता है वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके चलता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ से अगर कभी एयरपोर्ट जाएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें व्यथित कर सकती हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, रोड पे कचरा पड़ा है। लेकिन अगर आप हवाई जहाज में ऊपर उड़ जाएंगे तो आप सब कुछ छोड़ करके आप कहीं और जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस छोटे से जीवन में हम किन किन वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है फिर उसके बाद फिर छोड़ करके फिर कहीं और चले जाते हैं और बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था, किन लोगों से मिले थे, कौन हमारे शत्रु थे, मित्र थे। हर जन्म में जो भी व्यक्ति हमारे शत्रु मित्र हो रहे हैं वो हमारे कर्मों के ही पार्सल हमको दे रहे हैं। ये सत्य है, इस सत्य को भक्त समझते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि भगवान बहुत कम दे रहे हैं हमको, इसलिए सहन करके आगे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। पढ़िएगा आगे,
भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मित अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है।
थोड़ा समझ देना चाहिए कि शत्रु को भी दयालु होता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को बोलता था कि प्रभुपाद जी आपको सम होना चाहिए, अर्थात आप कोई दोष किसी में नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद जी मायावादियों की खंड का निंदा कर रहे थे कि ऐसा मायावाद क्यों करते हैं वो। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग हैं समदृष्टि वाले, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सभी लोग भक्ति करने के अधिकारी हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं ये कहते हुए कि ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है और ये कर सकता है। तो उस दृष्टि से हम लोग समदर्शी हैं। लेकिन ये गलत होगा अगर हम सोचें कि समदृष्टि का अर्थ है दृष्टि का भाव, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन रहता है। जैसे एक कवि यदवा वदवा कवि ऐसे करके बोल रहे थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। कुछ भी वो कुछ लिख के आ गया था कविता, तो महाप्रभु उसको सुनते नहीं थे। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनते थे और उसके बाद कोई व्यक्ति महाप्रभु को सुना सकता था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मायावाद और भक्ति के जो सिद्धांत है उसको मैं भेद नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते, ये ध्यान देना चाहिए। अगर किसी मायावाद का भी खंडन प्रभुपाद कर रहे हैं या महान आचार्य लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको शत्रु मान के कर रहे हैं, अभी तो केवल यही है कि ये व्यक्ति अज्ञान में इस प्रकार की बातें कर रहा है, इससे दूसरों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए वो ऐसा वो खंडन करते हैं, भगवान के विरुद्ध है।
इसलिए मायावादी भाषा सुन लेला
हो सर्वनाश। तो डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये नहीं है कि वो उसको शत्रु मान रहे हैं। वस्तुतः प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं ना, क्या है वो हित्वात्म पातम गृहमंदकूपम। इस प्रकार से गृहमंदकूपम गृहमेदी आश्रम को, आश्रम नहीं कहना चाहिए, गृहमेदी के जो स्थिति है उसको वो बहुत गर्हित मान रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि वो हिरण्यकश्यप को शत्रु मान रहे हैं, लेकिन ये जो उनका बीमारी है भौतिक वासना उसको वो खराब मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भक्तों के पास कोई दृष्टि नहीं होती, ये समझ लेना चाहिए। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते थे हेट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड। तो जिस व्यक्ति की बीमारी है उसको घृणा करना है, लेकिन बीमार व्यक्ति को घृणा नहीं करना है। तो कोई इस प्रकार से शत्रु बनता भी है, जैसे हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं, अम्बरीश महाराज के केस में देखते हैं, तो वो कोई उनके प्रति दया ही करते हैं। और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के लिए प्रार्थना करी और अपना जितना भी पुण्य था वो भी दांव पे लगा दिया ताकि वो जो है स्वस्थ हो सकें। तो ये बड़ी सुंदर स्थिति बता रहे हैं। और दूसरा बात यहाँ पर दिख रहे हैं कि शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, इसका अर्थ ये नहीं कि शारीरिक कष्टों को निवारण करने के लिए प्रयास नहीं करता, क्योंकि भक्ति में बाधा बनते हैं इसलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं कि उनका शरीर ठीक से चले, लेकिन इसकी वजह से भक्ति में को में रुकावट नहीं आने देते। मतलब दवा भी खाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने भजन को छोड़ करके बैठ जाएं, भक्ति को छोड़ करके बैठ जाएं। और नए भक्त तो बहाना ढूंढते, सबसे पहले बीमार होंगे तो सबसे पहले क्या करना है, जब थैली को छुपा के रख देना, माला नहीं करना है अभी, क्यों प्रभु जी मेरे सर में मेरे को एक पिन लग गई हाथ में, इसलिए। तो ये अंतर आप देख सकते। आज मैं सोच रहा था कि हम लोग 2-3 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तो कितना कष्ट हो जाता है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज मेरे ख्याल में 2008 से बीमार है, नहीं 9-10 साल से कम बीमार चल रहे हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि वो कृष्ण की सेवा छोड़ दी। सोचिए कितनी अधिक सहन शक्ति है, 10-11 साल अब चल फिर ना सकें ठीक से, और उसके बावजूद भी भक्ति में लगे रहें और कृष्ण से कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि अरे मैंने इतना भजन किया, इतना भागवत प्रचार किया और अब ये कर रहे हैं हमारे साथ, कभी कंप्लेन किए हैं हमारा। तो मैं देख रहा था किस प्रकार से भगवान के भक्त इस प्रकार से जब उनकी परीक्षा भी होती है तो भगवान शक्ति भी देते हैं उनको उस परीक्षा को सहन कर पाने की। ये अद्भुत बात थी, है ना। हम लोग एक हफ्ते अगर बीमार पड़ जाए तो हमारी बैंड बजाएगा भक्ति का। तो जितना बड़ा भक्त होता है उसको उतनी बड़ी परीक्षा देखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं वो सहिष्णु होता है। यस,
वह सहिष्णु होता है और भागवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है।
थोड़ा न्यूज़ नहीं पढ़िएगा,
ठीक है। उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाइयों से मिले। अतएव
तो क्या भक्ति के लिए प्रयास नहीं करता?
भक्ति के लिए तो प्रयास करता ही है।
भक्ति में करने में तो बहुत कठिनाई आती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है भौतिक वस्तुओं के लिए, भोग की वस्तुओं के लिए। यस,
अतएव सदैव प्रसन्न चित्त रहता है।
यानी कि हमने क्या सूत्र सीखा प्रसन्न चित्त होने के लिए? भौतिक वस्तुओं को जिनको इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास हो और जिनकी हमें नितांत आवश्यकता नहीं हो उसको इकट्ठा करने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और केवल वस्तु ही नहीं, यश इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, चेले इकट्ठा करना, कुछ भी हम करेंगे जो कि भौतिक है अगर, तो फिर हमें हमारे चित्त में प्रसन्नता नहीं रहेगी, एंजाइटी में रहेंगे हम लोग, ये चाहिए, वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना। यस, ये सभी कुछ टेम्प्रेरी, ये समझ लेना चाहिए। यस,
वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है।
इंटरेस्टिंग है, जब कंस ने वसुदेव जी को और देवकी को जाने दिया था, क्षमा कीजिएगा, वसुदेव जी अपने लड़के को लेकर के आए थे, पहले लड़के को, और कंस ने कहा नहीं इससे मुझे कोई भय नहीं है और जाने दिया, तो वसुदेव जी को उस पर कोई विश्वास नहीं था क्योंकि जानते थे उसकी इंद्रियां सहमित नहीं है। तो अगर इंद्रियां सहमित नहीं है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके निश्चय को, उसके संकल्प को उसकी इंद्रियां खींच देंगी, तोड़ देंगी। यस यस, अगर हमारा मन सहमित नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता।
यस, ये गुण तो जो नियमित रूप से शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान का भजन करते हैं ये सहज रूप से आ जाता है। अब कोई कहे कि भाई कृष्ण को छोड़ के आप किसी और का भजन करिए, तो मैं नहीं समझता यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति करेगा। हो सकता है भक्त का पतन हो जाए और वो कृष्ण की पूजा ना कर पाए, लेकिन कृष्ण की पूजा छोड़ करके किसी और की पूजा करेगा ये तो बहुत डाउटफुल है। वो हो सकता है माया में चला जाए लेकिन कृष्ण की पूजा छोड़कर किसी और ये करेगा ये तो बहुत डाउटफुल है। इतना तो इस्कॉन में आने के बाद व्यक्ति के दिमाग में घुस जाता है, तो श्रवण करने से ये व्यक्ति विचलित नहीं रहता।
वह पूर्णता अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णता परमेश्वर पर स्थित करने में सामर्थ होता है।
यस, हमने बहुत सारे गुण देखे और ये एक इम्पॉर्टेंट गुण हमने देखा है कि जब व्यक्ति समझ लेता है कि कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं, तो भक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। बाधाएं तो आती हैं लेकिन ये विश्वास रहना चाहिए कि कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं और मैं अगर उनकी सेवा नहीं भी कर रहा हूं तो उनकी सेवा कर रहा हूं। समझते हैं इसका अर्थ? अगर कोई व्यक्ति माया में जाकर अपनी इंद्रियों की भी सेवा कर रहा है तो इंद्रियां भगवान की ही हैं, तो इसलिए जब मुझे सेवा करनी ही है कृष्ण की तो क्यों ना प्रत्यक्ष रूप से किया जाए जिससे मुझे भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो। तो ये कन्विक्शन जितना दृढ़ रहेगा उतना ही व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने के लिए स्थिर रहेगा।
भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं।
एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप इस स्टैंडर्ड को देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे गुण नहीं है हमारे पास, हाँ ऑलमोस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार का स्टैंडर्ड प्राप्त करना भक्ति का ये मुश्किल है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि तरीका क्या है। क्या तरीका है? साधना भक्ति। साधना भक्ति करने से क्रमशः विकास होता है, क्रमे क्रमे भक्त होई बे उत्तम, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो आपने पढ़ा था आज? हाँ नहीं, ये चैतन्य चरितामृत में है। तो ये व्यक्ति, सबसे बड़ी दिक्कत हम साधकों के संग ये हो जाती है कि हम लोग उत्तम बिना हुए अपने को उत्तम मानने बैठ जाते हैं। हम सोचते हम परफेक्ट हो गए जबकि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और उसका सलूशन क्या है, टेस्ट क्या है? अकेले रूम में बैठिए चुपचाप और फिर देखिए कि आपका मन कहाँ जा रहा है, तो अब समझ में आ जाएगा कि हम कितने उत्तम भक्त हैं। और इस कारण से हम लोग साधना में ढिलाई देते हैं, जैसे पतंग में ढील देते हैं ना, फिर पतंग उड़ जाती है कहीं और इसमें कोई क्या कहते हैं उसको काट देता है उसको। तो ये एक ये सहज रूप से होता है कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ तो अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ। साल से परफेक्शन नहीं होता है, परफेक्शन का बहुत सिंपल तरीका है, रूम में अकेले बैठिए और फिर आप ध्यान लगाइए कि आपका मन कहाँ जा रहा है। तो सो जाएंगे या तो सो जाएंगे या फिर और कुछ मैं बोलना नहीं चाहता है कि कहाँ जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी आप विचार कर सकते हैं। तो या फिर हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं तो क्या अनुभूति हो रही। तो इस प्रकार से अगर रोमांचित नहीं हो रहा है मन तो भी हमको साधना की बहुत आवश्यकता है, बहुत हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इस पे हमारा कोई अथॉरिटी या हमारा इंचार्ज हमको डांटे, इसकी बजाय क्लास सुन करके शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन का दायित्व स्वयं लेना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति तलवार लेकर हमारे पीछे लगा रहे, उसकी बजाय व्यक्ति को स्वयं दायित्व लेना चाहिए कि मेरा जो साधना है वो मैं ठीक से कर सकूँ। और अन्यथा इस जगत में, इस जीवन में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। केवल जन्म मृत्यु का चक्र है और उसमें हम पिससे जा रहे हैं।
और हमारे लीडर या इंचार्ज जो भी हैं उनके पास भी तो अपनी साधना है, वो अपना जब करेंगे कि दूसरे का कितना देख।
हाँ, और ये भाई एक आधा छः महीना देख लिया, एक साल देख लिया, अब क्या रोज रोज देखा जाए? हाथ पकड़ के मुंह पकड़ के थोड़ा जब कराया जाएगा। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट, इसलिए आवश्यक है हम लोग क्लास में आए, खुले कान से खुले हृदय से सुने और सीखें कि हम किस प्रकार से अपने भजन को साधन को इम्प्रूव कर सकते हैं, भक्ति ठीक से कर सकते हैं। ये हमारी दायित्व है। तो इस विधि विधानों का ठीक से पालन करने से व्यक्ति इस प्रकार के स्तर तक आ सकता है। एक श्लोक और देखेंगे हम, भगवद गीता 12.15। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हर्षमर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह सच मे प्रियः। ये बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। कल का होमवर्क है हमारे लिए। कम से एक शरीर से तो मैं नहीं समझता कि हमारे भक्त किसी को कष्ट देते होंगे, लेकिन वाणी पे जरा देखिए कि वाणी के द्वारा कितने लोगों को हम कष्ट दे सक रहे हैं या नहीं दे रहे। ये उत्तर की बात ही नहीं है, ये होमवर्क है कि वाणी के द्वारा हम किसी को सुख दें, कष्ट ना है ना पहुंचाए वो तो आगे की बात है, वाणी के द्वारा कम से कम हम लोग को सुख दें। हाथ पैर से तो किसी को मारपीट नहीं करते हैं भक्त लोग, लेकिन वाणी के द्वारा, एटलीस्ट यहाँ के भक्त, लेकिन वाणी के द्वारा आप लोगों को सुख देने का प्रयास करें। और इसके लिए वाणी पे संयम रखना पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा जर्जर 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 करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति के हृदय को आहत जरूर करेंगे। फिर हमें बोलना पड़ेगा, प्रभु जी मैं ये बोलना नहीं चाहता था, तो फिर बोला क्यों? ये आप अपने जीवन में देख लीजिएगा। हम आपने मतलब हम सबको अपने अपने जीवन में देखना है। ये नहीं कह रहे कि आप बोलिएगा मत, लेकिन आप ये देखिए कि क्या इस वाणी से उसका हित होगा, क्या वो सुखी होगा, ये विचार कीजिएगा। ये इतना आसान होमवर्क नहीं है। अब कल तो हम लोग का क्लास नहीं है, लेकिन जब भी अगले बार क्लास होगा आप विचार कीजिएगा मंडे को कि इस होमवर्क को करने से आपका चित्त कितना सुखी हुआ, क्योंकि जो दूसरे को आप सुख देंगे वही सुख घूम करके आपके पास वापस आएगा। ठीक है। तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, अब पहला वाला तो होमवर्क है ही और साथ में दूसरा वाला भी होमवर्क है। आप दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाओगे इसका अर्थ ये नहीं कि कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा। अब उसमें संयम धरना ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। उपदेश उद्धव जी भगवान को कहते हैं कि कोई मनीषी व्यक्ति भी अगर उसका अपमान किया जाता है किसी मूर्ख के द्वारा सभा में, तो उसका मन जो है वो बहुत उद्वेलित हो जाता है। तो आपके भक्त किस प्रकार से सहन कर पाते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि उनका मन मेरे रूप गुण में लगा रहता है, इस कारण से वो सहन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इसको हम कल्टीवेट करने का प्रयास करें। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका अर्थ है कि संभाव का अर्थ है सुख दुख अनुभव करेंगे, भय में चिंता भी, भय और चिंता भी अनुभव करेंगे, हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा को कंटिन्यू करना। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर भौतिक वार्ता करेंगे तो शोक, भय और मोह, इन तीनों में से किसी एक का निर्माण जरूर होगा। तो अगर वाणी से किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं तो बहुत प्रयास करना चाहिए कि भगवत चर्चा के अलावा कुछ नहीं हो, नहीं तो भौतिक वाणी शोक, भय और मोह का निर्माण करेगी ही, उसका गुण है अपने आप। तो आप किसी को गाली भी ना दें, खाली भौतिक वार्ता करेंगे तो वो तीन चीजों का निर्माण निश्चित रूप से होगा। अब हमारा कर्तव्य है कि कम से कम भक्त होते हुए हम ऐसा ना करें। ओके, एक बात महाराज बोल रहे थे कि ऐसे ही व्यक्ति जलता रहता है और उसको, मान लीजिए किसी के कोई हाथ जल गया हो, अब उसके ऊपर और आप कठोर वचन बोल दीजिए तो उस पर नमक डालने जैसा हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही व्यक्ति तीन क्लेशों से जल रहा है, आदि धाविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और उसके बाद और हम कुछ कड़वा बोल दें बेचारा और जल जाएगा, तो क्या ये दयालुता है? ये दयालुता नहीं है। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके घर वालों को तो बहुत चिंता हो गई होगी, तो फिर आप क्यों भक्ति कर रहे हैं? अब भौतिक कारणों से चिंता नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। देखिए, कृष्ण भावनामृत में लीन का अर्थ एक सिंपल है कि ये हम अगर याद रखें कि अल्टीमेटली कृष्ण ही कंट्रोलर हैं तो विचलन बहुत कम होगा। कोई व्यक्ति विशेष हमारे प्रति कोई विशेष प्रकार का बर्ताव कर रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, दोनों ही परिस्थिति में कृष्ण उसके हृदय को कंट्रोल कर रहे, तो इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति कभी कभी बोलता है प्रभु जी बस आपका दर्शन करने के लिए आए, मतलब इतना कोई महान बात वो मानता है कि आपका दर्शन करने से पवित्र हो जाते, तो हम तो मन में सोचेंगे भाई अगर हमारे दर्शन से हम पवित्र लोग पवित्र हो जाते तो हम ही शीशे के आगे खड़े हो जाते, अपना दर्शन करके हम ही पवित्र हो जाते। अब ये तो भावना हृदय में जाता, हम अपने हृदय को जानते हैं कि कितना पवित्र है, बाहर वाले कुछ भी सोचें तो ऐसा नहीं कि आप बाहर वाला सोचेगा कि आपके दर्शन से पवित्र हो गए तो हम भी सोचेंगे हाँ 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 निश्चित रूप से मैंने इसे पवित्र कर दिया अपने दर्शन से। तो ये जो निंदा है उसको तो सहना मुश्किल होता है लेकिन स्तुति को सहना और मुश्किल होता है। लेकिन दोनों ही रूप से भगवान का भक्त अपनी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण के दास के रूप में उसको याद रखता है तो विचलित नहीं होता। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। ये तो स्पष्ट समझ रहे हैं। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत हो रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। अगर भक्त सफल नहीं हो पाते तो क्या सोचते हैं? कृष्ण की कृपा है या कृष्ण नहीं चाहते कि मैं सफल हूं? मेरी सफलता इस बात में है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूं, तो इसलिए निराश नहीं होते हैं। और शत्रु से बदले की शंका, अगर शत्रु बदला लेगा तो क्या कर पाएगा? मार दे, अब मुझे पता था ये उत्तर आएगा, मार देगा, चोट पहुंचाएगा, लेकिन वस्तुतः वो मेरी इंद्रिय तृप्ति को रोक देगा। इसलिए भय व्यक्ति को भय होता है। मेन बात ये है, मान लीजिए किसी का राज्य है तो राज्य छीन लेगा, किसी की पत्नी तो पत्नी को छीन लेगा, ये धन छीन लेगा, यही बात तो इसी बात का तो भय होता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता रहता है, आपके हरि नाम को कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। आपने अगर भगवद गीता पढ़ी है, भगवान को प्रणाम किया, तो कौन छीन सकता है? धीरे धीरे इस बात समझ में आने लगती कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी छीन नहीं सकता, काल भी नहीं छीन सकता है, सब जानते हैं इस बात को। तो फिर व्यक्ति क्रमशः भय से मुक्त हो जाता है और भगवान के कह सकते हैं प्रोटेक्शन को अपने जीवन में अनुभव कर पाता। जो आप नेहाभिक्रमणाश्वस्ति समझते हैं, तो जब काल जो भी भक्ति कर रहे हैं वो काल के प्रभाव से कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, यहाँ रुकेंगे। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।